SBS की एक नई डॉक्यूमेंट्री श्रृंखला लाइफ ऑन द आउटसाइड है, जो एक अनूठी पहल है। इसका उद्देश्य है आपराधिक व्यवहार में होने वाली पुनरावृत्तियों से निपटना। ये श्रृंखला इस बात की जांच करती है कि क्या होता है जब जेल से रिहा हुए लोगों को 100 दिनों के लिए स्थिर घरों में रखने की पेशकश की जाती है। तो आज सेटलमेंट गाइड में इस श्रृंखला में बात ऑस्ट्रेलिया की जेल प्रणाली के बारे में। ऑस्ट्रेलिया में आपराधिक अपराध करने वाले वयस्कों का प्रबंधन ऑस्ट्रेलियन आपराधिक न्याय प्रणाली द्वारा किया जाता है। सुधारात्मक सुविधा यानी करेक्शन फैसिलिटी शब्द उस स्थान का वर्णन करता है जब कोई व्यक्ति किसी आपराधिक अपराध का दोषी पाए जाने पर अपनी सजा काटता है। जेल सबसे कठोर प्रकार की सुधारात्मक सुविधा है, न केवल हिरासत में रहने वालों के लिए बल्कि पीछे छूटे गए परिवारों के लिए भी। ऑस्ट्रेलिया में 115 सुधार सुविधाएं हैं। ये निजी और सरकार दोनों द्वारा संचालित हैं। राज्यों और क्षेत्रों में न्याय प्रणाली चाहे समान है, लेकिन प्रत्येक क्षेत्राधिकार अपनी सुविधाओं का प्रबंधन करता है। ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑस्ट्रेलिया की वयस्क जेल आबादी के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र करता है। विलियम मिल्ले एबीएस नेशनल सेंटर ऑफ क्राइम एंड जस्टिस स्टैटिस्टिक्स के निदेशक हैं। वो बताते हैं,
In June 2021, we had 43,000 prisoners in the adult corrections system, and of those, just over 15,000 were on remand awaiting trial, 92% are males versus 8% females. On average, sentenced prisoners spend 3.5 years in prison, and for those on remand awaiting trial, that's 3.4 months.
Jail mein band adivasi aur Torres Strait Islanders logon ki anupathin sankhya ko swikar karna bahut hi mahatvapurn hai. कई जटिल कारण हैं जो इन खतरनाक दरों के लिए हैं, जैसे कि ऐतिहासिक आघात और पीढ़ीगत नुकसान आदि। एबीएस से आंकड़े बताते हैं,
We found that the rate of total persons in the prison system was 214 adults per 100,000 adult population, and if I just take the Aboriginal and Torres Strait Islander community, we're looking at 2412 Aboriginal and Torres Strait Islander adults in the system per 100,000 Aboriginal persons. So it's about 10 times the rate of the average population.
जब किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है, तो उसका मूल्यांकन सुरक्षा के स्तर को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जिसकी उसे आवश्यकता होती है। आतंकवाद जैसे गंभीर अपराधों को उच्चतम सुरक्षा वर्गीकरण प्राप्त होता है। एक रिमांड कैदी वो होता है जिसे गिरफ्तार किए जाने के बाद हिरासत में रखा जाता है और एक अपराध का आरोप लगाया जाता है, लेकिन अभी भी मुकदमे और सजा का इंतजार कर रहा है। क्योंकि जेल की आबादी में केवल 8% महिलाएं हैं, इसलिए जेलों को ये सुनिश्चित करना होता है कि सभी को सबसे सुरक्षित तरीके से रखा जाए। NSW में मेट्रो वेस्ट की कस्टोडियन डायरेक्टर Emma Smith बताती हैं,
It would be inappropriate for men and women to be housed together because obviously there's different offences, they have different needs. You know, we have to be quite conscious of the fact that a lot of women in custody do come from traumatic backgrounds, so that's something that we have to take into consideration.
सलाखों के पीछे कैदियों को स्वास्थ्य क्लिनिक में भाग लेने और अपने अपमानजनक व्यवहार जैसे कि घरेलू हिंसा, स्वास्थ्य जैसे विषय को समझने के लिए संबंधित कार्यक्रमों में भाग लेने की आवश्यकता होती है। कैदी काम भी करते हैं।
An inmate that's on remand isn't required to work, but they are usually afforded the opportunity. However, sentenced inmates do work. So each correctional centre might have different industries as such to work in. Some of the areas that they might work in would be hygiene, the cleaning of the area, kitchen and maintenance. And other areas that some centres have are bakery, print, engineering, buy-ups, which is like a shopping centre that inmates can buy different items from.
किसी की गिरफ्तारी के बाद जेल में उसका पता लगाना संभव है। परिवार के किसी सदस्य को कहाँ रखा जा रहा है, ये जानने के लिए लोग अपने राज्य में सुधार सेवा विभाग से संपर्क कर सकते हैं। ये जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होती है और मिलने के लिए उस विशेष जेल से पूर्व अनुमति लेनी होती है। स्वयंसेवी नादिया के परिवार का एक सदस्य सलाखों के पीछे है। उन्होंने बार्स बिटवीन वेबसाइट की स्थापना की ताकि लोगों को उन संसाधनों को खोजने में मदद मिल सके जिनकी उन्हें आवश्यकता है जब कोई प्रियजन जेल जाता है। नादिया कहती हैं कि शर्म, कलंक और अलगाव आमतौर पर बाहर रहे परिवारों द्वारा अनुभव किया जाता है।
Someone in prison, find out what services there are in your area by going to www.barsbetween.org. Most of these are run by volunteers who are going through what you also might be going through. They are often the ones who are left to carry the emotional and even financial burden of somebody inside. Someone once said the person does the crime and the family does the time. It really feels like that.
अब कैदियों को जेल के अंदर जाने के लिए लेकिन रिहाई के बाद भी समर्थन की आवश्यकता होती है। पुनरावर्तन या पुनः अपमान के कारण जटिल हैं। नशीली दवाइयों का उपयोग, बेरोजगारी, निम्न शिक्षा स्तर और खराब मानसिक स्वास्थ्य सभी जोखिम कारक हैं और रिलीज के बाद सपोर्ट सेवाओं की कमी है। विलियम मिल्ले बताते हैं,
and that's saying about 46% of prisoners will reoffend within 2 years. We have a metric that shows prior imprisonment of those that are currently in prisons. We were showing around 60% had a prior imprisonment term, but that's not necessary within 2 years. That could have been longer term.
और behind bars की स्वयंसेविका नादिया का कहना है कि जेल में बंद लोगों के परिवारों के लिए सपोर्ट बढ़ाने से इन आंकड़ों में सुधार होता है।
Research also shows that there is more chance the person once released will be able to reintegrate back into society and not be one of those statistics returning to prison if they have good family support on the outside.
SBS की इस नई documentary श्रृंखला Life on the Outside का उद्देश्य आपराधिक व्यवहार में होने वाली पुनरावृत्ति से निपटना है। और आप SBS On Demand पर Life on the Outside देख सकते हैं।